ما لا طاقت لنا به، وہ چیز یہ مفعول ہے ما کے، تحملنا کے، پہلا مفعول نا، تحمل فعل ہے اصل میں، تو نا بوجھ رکھ، نا ہم پر، اور وہ بوجھ کے عربی ہے ما لا تا، وہ جو کہ اس کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، لا طاقت بالکل کسی قسم کی طاقت ہم میں نہیں ہے، لا طاقت کا لا نفی جنس بتا رہا ہے کہ جس کی مطلقاً برداشت نہ ہو، لا طاقت لنا بھی اس کے ساتھ یعنی اس کو اٹھانے کے لیے، واعف عنا عفا یعفو سے ہے، اور عن اس کے ساتھ صلہ آتا ہے، ہم سے درگزر کر، واغفر لنا غفر یغفرو کے بعد لے کا صلہ آتا ہے، عفا یعفو کے بعد عن آتا ہے، رحم یرحمو کے بعد صلہ کوئی نہیں ہوتا، یوں نہیں کہتے رحم اللہ علیہ، یہ کہنا عربی میں غلط ہے، بلکہ کہیں گے رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ کہنا اور بات ہے، ورب جب آئے گا تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہم ارحم علینا، یہ نہ کہیں گے اللہم ارحمنا، اللہم عفو عنا، اللہم اغفر لنا، یہ صلے تینوں آگے طرح، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، اس مولانا کو پڑھیں اور پھر مولانا کوثر نیازی تو بس ہمیں تو کچھ عجیب ہی لگتا ہے، وہ سچا ہے ایک آدمی جس نے لکھا کہ مولانا اللہ ہی ہے، دوسرے مولانا تو یوں ہی مولانا خواب خواب رکھا، یہ شعر کا ان کو مولانا کہنا، اچھا باپ جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ واؤ لام یہ مادے سے یہ ورب یہ اسم نکلا ہے مولا، اور یہاں دیکھیے یہ کا دندانا موجود ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اصل میں لام کے اوپر کھڑی زبر اور یہ تھا، پھر مولا کے میں نے کارساز مددگار، مولا کے میں نے چچا کا بیٹا بھی ہوتا ہے قرآن کے علاوہ شعروں میں بکثرت استعمال ہوا ہے، چچا کا بیٹا اسے مولا ہی کہتے تھے، جو غلام کسی نے آزاد کیا ہو تو وہ آزاد کردہ غلام اور آزاد کرنے والے کے درمیان جو تعلق ہوتا تھا جسے ولا کہتے ہیں، اور جو وراثت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی بنتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے مولا کہلاتے ہیں، یعنی آزاد کرنے والا اپنے غلام کا مولا ہے، اور وہ جو آزاد کیا ہوا غلام ہے وہ اپنے سابق آقا کا مولا ہے، تو اس طرح سے مولا کے بہت سے معنی ہیں، یہاں مددگار کے معنی، سب معنوں میں واو لام یہ والے یا یلی میں قریب ہونے کا معنی ہے، اس کے روٹس میں یہ قریب ہونا نزدیک ہونے کا معنی ضرور پایا جائے گا، چاہے وہ قرابت کے لحاظ سے ہو، درجے کے لحاظ سے ہو وغیرہ، فنسرنا پس تو ہماری مدد کر، علی کے مقابلے پر، فنسرنا کا تو معنی ہو سکتا ہماری مدد کر، لیکن کس کے مقابلے پر، وہ بھی آگے آ گیا، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے پر ہماری نصرت کر، اور نصر ینصروں کا معنی ہی ہوتا ہے کسی کی ایسی مدد کرنا کہ وہی کامیاب ہو جائے، یہ نہیں کہ اس کو 10 روپے دے دیے چاہے اس کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، نصرت کے معنی یہی ہے کہ اس کی ایسی مدد کرنا کہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے، تو یہ آخر پہ دعا ختم ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، واللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، یہاں اس صورت میں اس کی ایک خاص چیز قابل ذکر یہ ہے کہ یہاں عام طور پر قاری میم اور الف جو اللہ ہے اس کو ملاتے ہیں، یعنی الف نا لام میم پہ وقف کیا تو جا سکتا ہے آیت ہے، لیکن ملاتے ہیں اور میم کی زبر دے کے ملاتے ہیں، بہرحال ان کا تک خیال یہ ہے کہ اس طرح سے یا اہل زبان ملاتے ہوں گے کہ چونکہ میم میں کہے تو آخر پہ میم ساکن آتی ہے، پھر اللہ کہے تو حمزہ غسلہ ہے، آگے لام تاریخ ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہونے سے ایک کو متحرک کرنا پڑے گا، لیکن متحرک زیر سے بھی ہو سکتا تھا، اور بعض کی راتوں میں الف لام میم ملا ہو بھی آیا ہے، متحرک تو ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ کے نام میں تفخیم پیدا ہوگی میم ملانے سے، بہرحال وجہ جو بھی کہیں اس کا نہ کوئی گرامر سے تعلق ہے نہ کچھ، قرآت کی ایک بات ہے کہ میم کو الف لام اللہ کے ساتھ زبر سے ملاتے ہیں، اس کا کوئی نہ بھی رفع نصب یار وغیرہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لا الہ الا ہوا یہ پورا ایک جملہ ہے اصل میں، تو لا الہ یعنی لا الہ موجود الا ہوا، کوئی الہ موجود نہیں ہے مگر سوائے اس کے، اور یہ پورا جملہ اللہ کی خبر ہے، یعنی اللہ لا الہ الا ہوا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الحی القیوم بھی جیسے آیت الکرسی میں آیا تھا، ایک طرح کی یہ خبر بھی بن سکتی ہے، یعنی ہو الحی القیوم. اور کیونکہ ہوا کی صفت بنائے یا حال بنائے گنجائش ہے، نکالتے ہیں نا بھی سیدھی بات یہ کہ الحی القیوم بھی ایک خبر ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ حی ہے اور قیوم ہے. اس طرح ترجمہ ہوگا مبتدا خبر مان لیں. الحی اور القیوم کے پہلے میں نے گزر چکے ہیں. نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری تجھ پر کتاب، یعنی اللہ نے بالحق کے حق کے ساتھ. ہم یہ پہلے دیکھا ہے کہ بالحق کو بھی نابی تینوں طرح ملا لیتے ہیں، کتاب کے ساتھ حق ہے، کتاب کے لیے ہے یہ حال، موضع حال میں ہے. علیکہ کی کا کی ضمیر کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ حق ہوتے ہوئے. نزلہ کی ضمیر فاعل کے ساتھ، کہ اس نے حق کو ساتھ لیتے ہوئے نازل کیا. یہ نابی امکانات اس قسم کے وہ پیدا کرتے ہیں. اردو ترجمہ اگر ہم کر دیں، اس نے اتاری کتاب تجھ پر حق کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں اب اس کے فرق کرنے کی کہ اب یہ حق کے ساتھ کتاب کے لیے آ رہا ہے یا تیرے ساتھ آ رہا ہے یا اتارنے والے کے لیے آ رہا ہے. اردو میں بھی تینوں طرح گنجائش موجود ہے. مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا حال ہے، تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے، یہ کتاب کا حال ہے. گویا کہ نزلہ کا جو مفعول ہے مفعول کا حال ہے، نزلہ کا جو فاعل ہے اس کا حال نہیں ہے، کتاب کے لیے یہ ہے. تصدیق کرنے والے ہوتے ہوئے، لما بین یدیہ اس چیز کے لیے جو اس کے آگے ہے. یدیہ کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہ کتاب کے لیے ہے، یعنی اس کتاب کے آگے جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے. وہ انزل التوراۃ، اور اللہ نے ہی اتارا تورات کو، اور والانجیل، اور انجیل کو. یہ انزل کا فائل بھی وہی ہے جو نزل کا ہے، اس پر عطف ہے. اچھا، اس بارے میں نحوی عام طور پر کہتے ہیں جی تورات کا مادہ واو رے یہ ہے، اور ورا یری میں نے ہوتا ہے آگ کا ظاہر ہونا، چکمات پتھر کو رگڑ کے جب آگ نکلتی تھی اس کے لیے ورا یری کا لفظ مادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، یعنی آگ ظاہر ہوئی. اور اس طرح سے نجل کا مادہ لکھتے ہیں کہ اس کے میں نے چوڑائی اور وسعت کے ہوتے ہیں، عین النجلہ چوڑی آنکھ کو کہتے ہیں. اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ تورات میں نور اور روشنی کا معنی ہے، اور انجیل میں وسعت اور پھیلاؤ کا معنی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیونکہ یہودیوں کے دین کی نسبت زیادہ اس میں لبرلزم تھا اس وقت. لیکن یہ سب ہمارے نزدیک بالکل بکواس تو نہیں کہنا چاہیے لیکن نان سینس آیا ضرور. اس لیے خود تفسیر والے لکھتے ہیں کہ بھئی یہ غیر عربی لفظ ہیں، ان کو عربی مادوں پہ خواہ مخواہ کھینچ کے لانا بالکل غلط بات ہے. ہاں ایک مقصد کے لیے کہ ٹول لگائیں بھئی مادہ یہ بنتا، اس مادے کا ایک فائدہ ہوگا کہ آپ عربی ڈکشنری میں اس مادے کے تحت اس کو تلاش کر سکتے ہیں، بس ایک فائدہ ہے. ورنہ یہ کہ ورا یری روشن ہونا سے ہے یا کچھ، تو فائدے کا یعنی مادے بتانے کا ایک فائدہ یہ بنتا ہے کہ آپ نزدیک نزدیک جا پڑے کہ اچھا اس کا مادہ تو یہ بنتا ہے. انجیل کو دیکھیں تو نون جیم لام کے جہاں اور میں نے لکھے ہوں گے وہاں کہیں انجیل کا لفظ بھی لکھا ہوگا، الف نون جیم میں نہیں لکھا ہوگا. یہ فائدہ ہوتا ہے یعنی عربی مادے کے قریب جا پڑنا کہ اس کا، اگر یہ عربی لفظ ہوتا تو یوں مادہ ہوتا، یہ اس طرح کا قیاس ہوتا ہے. تو تورات لفظی میں نے اس کی جو ہے جو اصل لفظوں کے ہیں وہ تورہ کا لفظ عبرانی میں قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے، آج بھی انگریزی میں TORAH تورہ. چنانچہ اس تورات کو توریت اور اس طرح سے ہمارے ہاں بھی امالے وغیرہ کے ساتھ بعض قراتوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ معنی قانون کا ہے. اور انجیل کا کہتے ہیں کہ یہ ایونجلزم یا جس کے لیے انگریزی میں لفظ گاسپل بھی ہے، خوشخبری اور بشارت، گاسپل کا لفظ اسی سے نکلا. اور یہ غالباً کسی اصل آرامی جو بھی لفظ تھا اس میں شاید خوشخبری اور بشارت کا معنی تھا، پھر یونانی میں ترجمہ ہوا، وہاں سے پھر انگریزی میں گیا تو کہیں ایونجل کہیں وہ گاسپل بنا لیا، لیکن ایونجل انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا خوشخبری کے لیے. तो वो असल तो उसकी खुशखबरी है, यानी जो अगर आरामी जुबान जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थी उसमें इंजील के माने खुशखबरी के थे, जो कि इब्तदाई ईसाइयों ने इस्तेमाल किया, और फिर उस जमाने की इल्मी और सियासी जुबान थी यूनानी, फिर वो यूनानी में तर्जमे हुए। तो इस तरह का वह अनगलत तौरात वाल इंजील, और उसने नाजिल किया तौरात और इंजील को, यानी अल्लाह ताला ने मिन कबल इस नून जीम लाम में मादे में वुसत और चौड़ाई का माना होता है। मसलन एक आम लफ्ज है, वो क्या है उसका नाम, एक अरब दुनिया पे किताब लिखी है अरब औरत, नजला, नजला के बाद उसका कुछ नाम आता है, नजला औरतों के नाम रखते हैं। नून जीम लाम का माना जिसकी आंख बहुत चौड़ी हो, लंबी और चौड़ी आंख, अंजल मर्द को कहेंगे, औरत हो तो उसे नजला कहेंगे, उसमें चौड़ाई और वो सत का माना है। लेकिन उसका इन लफ्जों के इस्तलाही मानों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका अगर कोई माना है तो वो असली आरामी और उस इब्रानी में है जिससे वो लफ्ज आए हैं। तौरा के मैंने कानून के हैं ला, और अब यहां अगर हम ये बहस करें कि तौरा तो इंजील से क्या मुराद है, ये कुरान करीम का बयान तो यह है कि हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो किताबें दी गई गई उनका नाम है। आज तौरा और इंजील किसे कहते हैं, न्यू ओल्ड टेस्टमेंट, फिर ओल्ड टेस्टमेंट की भी पहली पांच किताबों को तौरा कहा जाता है यहूदियों के नजदीक, पेंटाटूक भी उसे कहते हैं। ये तफसील है, किसी किताब में आप देख सकते हैं कि तौरा से मुराद आजकल क्या है, कंपेरेटिव रिलीजन की किताबों में दूसरी किताबों में दिया होता है। कुरान करीम के नुक्ता नजर से ये दो किताबें थी जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और शायद अपनी बिल्कुल खालिस असली शक्ल में मौजूद नहीं है, और ये भी हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल मिट गई है, शायद मिली जुली चीजें मौजूद हैं। मिन कबलो यानी मिन कबले साले का, जब मुजाफिला उड़ाया तो लाम पे पेश आ गया, इससे पहले तौरात और इंजील भी नाजिल की, हुदल लिन्नास है लोगों के लिए हिदायत होते हुए भी हो सकता है, ये हुदन है मस्दर असल में, आप चाहें तो इसका तर्जमा मस्दर को हाल कर लें, यानी हादी अल लिन्नास कर लें, मफूल तो हो नहीं सकता क्योंकि तो मस्दर हाल हो सकता है फायल मफूल के मायने में मुनासब मौका, तो एक तो यूं तर्जमा हो सकता है कि वो पहले तौरात और इंजील भी लोगों के लिए हिदायत होते हुए या बनाकर नाजिल, एक माना हुदन का मस्दर भी हो सकता है इसलिए मफूल लहू भी हो सकता है कि लोगों की हिदायत के लिए नाजिल की, अब चाहे तो लोगों की हिदायत के लिए करें तो हुदन मफूल लहू का तर्जमा होगा, लोगों को हिदायत देने वाली होकर ना, ये उर्दू में तर्जमा बनेगा नहीं, कुछ बेठब सा बनेगा, इसलिए उर्दू मुहावरे के करीब यही पड़ता है कि हम इसको मफूल लहू मस्दर मान लें, उनकी हिदायत के लिए, हिदायत देने के लिए क्या, तो यह ज्यादा बेहतर है। वह अनजल अल फुरकान, और उसने फुरकान को नाजिल किया, फुरकान के मैंने लफ्जी तो है फर्क करने वाली चीज, फुलान है फेरे पाप से, फारिक के मानों में आता है, और इससे मुराद मोजा भी लिया जाता है, कुरान करीम के नामों में से भी एक है, सारी जो किताबें हैं आसमानी वो भी फुरकान हो सकती हैं, इसलिए अनजल अल फुरकान का यहां क्या असल सही माना मुराद है इसमें इख्तलाफ हुआ है कि उसने मोइज़ा उतारा, कुरान, कुरान का ऊपर भी जिक्र है, फिर ये फुरकान है, उनका फुरकान होना सारी किताबों का शायद मतलूब हो, शाह साहब ने तो फुरकान का तर्जमा इसीलिए किया है मोइज़ा उतारा। इन्नल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाह, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयात से इनकार किया, ये पूरा इन्ना का इस्म होगा अल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाह, और पूरा फिक्र लहुम अज़ाबुन शदीद, लहुम जार मजरूर और अज़ाब शदीद सिफत मौसूफ नकर मुअख्खर है मुब्तदा, उनके लिए बड़ी सख्त सजा है, ये होगा इन्ना की खबर फिक्रा पूरा, और एक फिक्रा अल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाह, ये पूरा फिक्रा इन्ना का इस्म है, जो लोग अल्लाह की आयात के मुनकर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतकाम, वाव अलग भी हो सकती है इस्तिनाफ की, इसका उसके साथ अत्फ कोई नहीं बनता, वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतकाम, अल्लाह गालिब है और इंतकाम वाला है, ज़ू इंतकाम, ज़ू मैंने वाला, इंतकाम नून काफ मीम से बाब इफ्तिआल है, और नाकम यन्तकिमु वमा तन्तकिमून मिन्ना कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है, इसके मैंने किसी से बिगड़ना, उसको सजा देना, और फिर उसमें ऐब लगाने के मैंने भी एक जगह तो कुरान में आए हैं। बहरहाल इंतकाम उर्दू में इस्तेमाल होता है बदला लेना, और असल बयान सजा देने का है, यानी सजा देना, और इन मानों में बदले का माना उसमें आता है। अल्लाह ताला सजा देने वाला है, यूं कर ले, शदीद इंदू इंतकाम है, सजा देने वाला है। बदला लेना बुरे काम का, हम आमतौर पर इंतकाम एक जाती बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन मानों में नहीं है। किसी को बुरे काम की सजा दे लेना यानी उसको बदला देना, इन मानों में यह है। नाकमयन के मुसलासी भी और इंतकाम हल तन के मुंह मिलना, तन के मुंह आया है वहां तो सलासी आया है, इंतकाम की शक्ल में तो यही है, दो जगह अल्लाह ताला के लिए आया है। बहरहाल उर्दू में जो इंतकाम का मैना है सही अरबी सेंस वो नहीं है, अगरचे बदले का मफहूम इसमें होता है लेकिन बुरे काम का बदला इन मानों में आता है। इन अल्लाह ला यख्वा अलैहि शयउन, बेशक अल्लाह ताला यानी ऐसा है ऐसा है, इन अल्लाह की खबर है आगे, ला यख्वा अलैहि शयउन फिल अर्ज वला फिस समा, ये पूरा अल्लाह की खबर है। ला यख्वा छुपी नहीं रहती, खफिया यख्वा छुपा होना पोशीदा होना, खेफे ये माता यह है, अलह उस पर, अरबी में मिन हो नहीं कहते, यानी यूं नहीं कहेंगे खफिया मिन हो उससे छुपा रह गया, बल्कि कहेंगे खफिया अलह है उससे छुपा रह गया। यह अरबी के सिले की बात है कि प्रपोजिशन अला इस्तेमाल होता है, हालांकि उर्दू में तर्जमान दोनों का तरह कर सकते, अल्लाह पर कोई चीज छुपी नहीं रहती लेकिन बा मुहावरा यही होगा अल्लाह से कोई चीज छुपी नहीं रहती, लेकिन अरबी में इस से का तर्जमा लफ्जी मिन वगैरह से नहीं होगा, बल्कि खफिया अलैह उससे पोशीदा रह गया, उस पर नहीं पोशीदा रहती, एक ही जमीर अल्लाह के लिए है। शई उन कोई चीज ये फायल है यख्फा का, फिल अर्द आसमान में, वला फिस समा है और ना ही आसमान में, यानी शई उन मौजूद उन फिल अर्द वला शई उन मौजूद उन फिस समा, क्योंकि लाया है अगर यूं नहीं कहा या ला यख्फा अलैहि शयउन फिल अर्द वस्समाए, यूं भी तो हो सकता था आसमान और जमीन की कोई चीज उससे पोशीदा नहीं रहती, अब जो लाया है तो उसका तर्जमा ना ही से करेंगे, उससे कोई चीज छुपी नहीं रहती जो जमीन में है और ना ही वो जो आसमान में है, ला के आने से यूं तर्जमा होगा।
सारी
हाँ ये पूरा फिक्रा ला यख्फा अलैहि शयउन ला यख्फा अलैह तो फेल फाइल हो गया ना असल फिक्रा, फिर लर्द वला फिस समा तो मुतअल्लिक फाइल है एक तरह से, हाँ शई उन जो के है आसमान में, नकरा मौसूफा है ना तो वो सारा गोया के फाइल से मुतअल्लिक है, फिर लर्द वला फिस समा इसका ताल्लुक फाइल से है जो ला यख्फा का है। शई कोई चीज जो भी जमीन में है आसमान में है अल्लाह से छुपी नहीं रहती। वो वल्लज़ी युसव्विरुकुम, बात असल में यह है कि तरतीब को देखे ना, कि यूं नहीं कहा कि जो भी आसमान में और चीज में है जमीन आसमान में जो चीज है अल्लाह से छुपी नहीं रहती, बल्कि इसको अल्लाह की सिफत के तौर पर बयान किया कि अल्लाह तो वो है जिससे छुपी नहीं रहती कोई चीज, यानी अल्लाह की सिफत के तौर पर है वो वल्लज़ी, और ये सिफात ही आ रही है। असल बात यह कि ईसाइयों को अल्लाह की सिफात में ही धोखा लगा था, और ये आयात सूरत आल इमरान की, इनका बैकग्राउंड यही बताया जाता है, इब्तदाई आयात वो वफद नजरान के मौके पर नाजिल हुई थी, तो इनमें एक तरह का तलबीहात और तारीजात है उनके अकायद की तरफ कि अल्लाह से तो कोई चीज जमीन आसमान की छुपी हुई नहीं है, उसने किताबें हिदायत के लिए दी, और इसी तरह से हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वो है हुवा मुब्तदा और फिर अल्लज़ी मौसूल और अगला फिक्रा सारा मिलकर ये उसकी हुवा की खबर बनती है। हुवा अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वो है जो ये काम करता है, युसव्विरुकुम तुम्हारी तस्वीरें बनाता है, ये तुम्हारी सूरत शक्ल देता है, सव्वरा युसव्विर सव्वरा हु उसने उसकी तस्वीर बनाई उसको सूरत दी, सव्वरा युसव्विर तस्वीरन, इसी से अल्लाह ताला का एक नाम मुसव्विर सूरत हशर में आया। फिल अरहाम रहमों में, अरहाम रहमुन की जमा है यानी माओ के पेट में, पेटों में बल्कि कहें वो तुम्हारी वहां शक्लें बनाता है, कैफ यशाओ जैसे वो चाहता है, यानी कैफ यशाओ तस्वीर रखो जैसी तस्वीर बनाना चाहता है। यशा का मफूल यहां नहीं लगाया, तो वो तुम्हारी शक्लें बनाता है। एक लिहाज से इसमें कि सब इंसानों की शक्लें अल्लाह ने बनाई, वो उनके अकीदा उलूहियत मसीह की तरदीद भी बैकग्राउंड के लिहाज से बनती है, वो तो खुद शक्लें देने वाला है। हजरत ईसा को भी शक्ल दी, तो जिसको शक्ल दी वो खुदा कैसे हुआ? यूं बात बनाते हैं मुफ्तरी। ला इलाहा यहां कैफा कैसा सवालिय के लिए नहीं, बल्कि जैसा के मैंने में, जैसे मता मैंने होता है ना कहां, लेकिन जहां का मैंने भी आ सकता है, कहीं कहीं इसका मैंने वही मैंने, जैसे वेयर का मैंने कहां भी हो सकता है और कहीं कहीं यहां भी हो जाता है। इस तरह से फिर वो इस्तेफहाम नहीं, एक तरह का जर्फ बन जाता है, तकरीबन जर्फ के मायनों में आ जाता है। तो कैफा कैसे, कैफ यशा वो कैसे चाहता है, आप कहें जैसे चाहता है, तो कैफ जैसा और जैसा, जहां और वहां, ये लफ्ज हम्मा नहीं होते हैं। उर्दू में शायद ये अलग अलग है, मेरे ख्याल में अरबी और अंग्रेजी में बिल्कुल वो मिलते जुलते आते हैं। वेयर मैंने ये भी होता है तुम कहां जा रहे हो, और वेयर मैंने वो जहां से आया, यूं भी मैंने कर लेते हैं। ला इलाहा इल्ला हुवा वो पहले जुमला आ चुका है, और अल अजीज अल हकीम चाहे होगा की सिफत मान ले और चाहे इसको एक अलग खबर बना ले मजीद कि उसके सिवा कोई इला नहीं है, अब अजीज व हकीम है। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीज अल हकीम उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अजीज और हकीम है, खबर के साथ तर्जमा करेंगे चाहे वो खबर मारफाई आए। वल्लजी अनजला अलैकल किताबा वो ज़ात है जिसने तुझ पर उतारी किताब, अनजला अनजलल किताबा अलैका, सीधा तो तरतीब यू होनी चाहिए फेल फाइल मफूल, अनजलल किताबा अलैका, अलैका पहले आया तो वो जिसे नबर कहते हैं ना एक्सेंट, वो इस तरह से बन जाता है अनजला अलैकल किताबा, किताब उतारी तुझ पर, यानी जोर तुझ पर है, उसने तुझ पर किताब उतारी। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन उन, ये हमारे कुर्रा हजरात तो मेरे ख्याल में गाना वाना तो खूब निकाला है, मखारिज भी, लेकिन नबर बोलने में और लिखने में पंक्चुएशन के और कई निशान ना हमारे उलमा ने निकाले कुरान मजीद के, ये तोए जीम वगैरह, लेकिन एक्सक्लेमेशन यानी यहां पुकारा जाता है और इंट्रोगेशन, इसकी कोई निशान नहीं। हालांकि कुरान मजीद में कई जगह सवालिय जुमले आते हैं, अंत यूसुफ, क्या तू यूसुफ है, तो ये निशान कुरान में अब कोई इस्तेमाल करे तो कहेंगे अरे अंग्रेजी के निशान लगाने लगे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर किसी जगह कोई अच्छा पंक्चुएशन, आखिर ये चीजें भी तो कुरान में नहीं थी, उलमा ने निकाली ना, और इनका मैंने निकाला कि ये फुल स्टॉप का मैंने देता है, तकरीबन पूरी आयत या मीम फुल स्टॉप है, या पॉइंट भी जिसे कहते हैं, और जो तोए है ये तकरीबन कोलन की जगह है, जीम तकरीबन सेमी कोलन की जगह आता है, या कामे की जगह ले ले बल इस तरह से, तो निशान अलग है, मैंने तो वही है। तो अजीब बात है कि पंक्चुएशन के निशानों में बहरहाल हमारे यहां अरबी में बल्कि कुरान मजीद में नहीं इस तरह के कोई निशान है। अब यूरोप की देखा देखी, अब अरबी इबारतों में साइन ऑफ कोटेशन, इक्तबास का निशान, दो इन्वर्टेड कामास के अंदर इबारत लिखना, ये भी हो जाता है और इस तरह से, लेकिन कुरान मजीद में लिखने में ये नहीं, इसका तारुफ नहीं हुआ, और कारियों ने नबर पे जोर नहीं दिया कि भाई वो ये गुफ्तगू जो अरबी सिखाते हैं वो इस पे जोर देते हैं कि इसको नबर ही कहते हैं कि किस जगह पे जोर देना है, तो उससे फिर वो माना का पता चलता है कि असल एम्फेसिस है किस पर, तो वो करीबन इसको यूं पढ़ेंगे वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, नाम पे जोर दे के पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अलैका पर जोर है, तुझ पर किताब उतारी, मिन्हु आयातुन मुहकमातुन उसमें से है कुछ मुहकम आयात, मिन्हु जार मजरूर, आयातुन मुहकमातुन सिफत मौसूफ मुब्तदा मुअख्खर, उसमें से मिन्हु यानी मिन हाज़ल किताब, आयातुन मुहकमातुन خبر کے طور پر کام دے رہا ہے مبتدا موخر. کچھ محکم آیات ہیں, محکم کے لفظی معنی مضبوط کی ہوئی, احکم یحکم احکاما کے اصل معنی مضبوط کرنا کسی چیز کو, اور اس طرح سے محکم اس میں مفعول کا صیغہ ہے, مضبوط کیا ہوا. پھر محکم ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے, آپ اس میں بھی پڑھیں گے اصول فقہ میں بھی, اصول تفسیر وغیرہ میں, محکم ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ وہ آیت جو اپنے معنی میں بالکل کلیئر ہے. حالانکہ محکم کا معنی کلیئر کا نہیں ہوتا, لیکن واضح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس میں گویا کوئی تاویل اور ہیرا پھیری کی گنجائش ہی نہیں ہے. آیات محکمات, اور محکمات نکرہ موصوفہ ہے, آگے اس کی صفت آ رہی ہے, ہن ام الکتاب. ہم ترجمہ جو کے ساتھ کر سکتے ہیں, اگر ترجمہ ہے وہ ہے کتاب کی ماں, ہن ام الکتاب وہ ہے کتاب کی ماں. اس پہ ہن تو محکمات اور آیات کے لیے آیا, ہی بھی کہہ سکتے تھے, لیکن ہن بھی جمع مؤنث بھی ہو سکتا ہے. خبر آئی ہے ام الکتاب, بظاہر آنا چاہیے تھا ہن امہات الکتاب, کیونکہ جب جمع آیا ہے مبتدا تو پھر خبر جمع آنی چاہیے. بحث کیا ہوا, دیکھیں نا یہاں اگر ابتدائی گرامر کو دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں مبتدا خبر وغیرہ کے قاعدے, تو اس کے مطابق تو یہ غلط ہو گیا. یہ تو ہونا چاہیے تھا ہن امہات الکتاب ہے, تو چنانچہ ناوی نے کہا بھی اس کی وجہ کیا ہے, یہ امہات کیوں نہیں کہا. پھر اس کے معنوں میں گئے, یہ ہر ایک آیت چونکہ ایسی ہے لہذا ایک ایک ام ان معنوں میں کر لیا. بہرحال جو بھی ہوا, عرب کو اس پہ کبھی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے محاورے اور ایڈیم کے مطابق بولا جا رہا ہے, وہ اس دھندے میں پڑے گا ہی نہیں کہ یا امہات ہونا چاہیے تھا. لیکن ناوی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہنہ مبتدا جمع مؤنث ہے تو خبر اس کی بات کیسے ہو گئی. انہوں نے پھر اس کا جواب دیا, جی یہ چونکہ ہر آیت اصل میں ایسی ہوتی ہے لہذا ایک ایک آیت کے معنوں میں کہا لے, یا ساری آیات بمنزلہ واحد آیت ہے ان معنوں میں لے لیا ہو. لیکن پھر بھی وہ گنجائش انہ کی تو اور اموں کی ڈسکریپنسی رہتی ہے, زبان کا محاورہ ہے, عرب ایسے موقع پر بولتے ہیں, بس ٹھیک ہے. یہاں آ کے صرف ناب سے ایک قرآن مجید کی بات نہیں ہے, اہل زبان کے اشعار وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوپر ہو جاتے ہیں, وہ محاورہ جو ہے وہ مبتدی والی زبان نہیں ہوتی کہ وہ اس میں ہی پھنسا رہے. تو وہ ام الکتاب ہے, یعنی محکمات جو ہیں وہ ام الکتاب ہے, اور ام الکتاب لفظی میں نے ماں, اور پھر ام کا میں نے جڑ اصل یہ کیا جاتا ہے. چنانچہ شاہ صاحب نے اصل کتاب کیا ہے, ام کا معنی یعنی صرف ماں مدر کے معنوں میں نہیں, محاورے میں مدر, ہر زبان میں مدر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایڈیومیٹیکلی, تو عربی میں بھی ہے. اس لحاظ سے اصل اور جڑ کو بھی ام کہا جاتا ہے, اہم چیز ہو اسے بھی کہا جاتا ہے. تو ام الکتاب وہ اصل کتاب کی, وہ کتاب کی اصل. اچھا, وَأُخَرُ متشابہات, اور کچھ اور ہیں متشابہات. یہ وَأُخَرُ متشابہات, یہ اُخَرُ ایک طرح کا مبتدا آ رہا ہے, لیکن بل اخر نہیں کہا, کیونکہ یہاں پیچھے سے جو امن ہو آیات محمد کمات اخر اس کے ساتھ لگا ہے, کچھ وہ آیات محکمات ہیں, وہ من ہو متشابہات ان معنوں میں لے کر کچھ دوسری, اور کچھ دوسری متشابہات ہیں. یہ صفت موصوف نہیں ہے, ایک مبتدا کا کام دے رہا ہے, ایک خبر کا کام دے رہا ہے. آیات محکمات تو صفت موصوف تھا, لیکن اخر و متشابہات یہ صفت موصوف نہیں ہے. اخر و مبتدا اور اخر و اصل میں اخر ہونی ہے, کیونکہ جو فعلا کی جمع آتی ہے وہ فعالن ہوتی ہے, افعال افائل اس کی الٹا جمع غیر منصرف ہوتی ہے جو مکسر ہوتی ہے, یوں تو افعالوں کی افعالون اور فعلا کی فعلیات سالم جمع آتی ہے, لیکن افعالوں کی جمع افعال غیر منصرف ہوتی ہے, اور فعلا کی جمع فعال منصرف ہوتی ہے. تو یہاں یہ غیر منصرف کیوں گیا ہے, नबी कहते हैं कि बस वो जो एक अदल वाला आपने पढ़ा था ना उमर वाला कायदा, ये वो लग गया और इसलिए इसको ओखरुन नहीं कहा बल्कि ओखरो कहा। ओखरुम मिनू बात तो एक ही है, ओखरुम मिनू उसमें से बात है तो वो ओखर मिनू के लिए ही आया है ना, मिनहू मुहकमात व मिनहू मुतशाबिहात, बात ऐसी है और वह ओखरुम मिनू यूं भी हो सकता है, लेकिन बात यह कि ओखरुन नहीं पढ़ते, इसको गैर मुनसरिफ कहा गया है और खास तौर पर इस जगह तो कहीं कहीं कर लेते हैं इसको मुनसरिफ भी, लेकिन यहां वो कहते हैं कि जी इसमें वो अदल वाली बात पैदा हुई और उमर की तरह का कायदा इसमें चल गया, वरना होना चाहिए था वह उखरुम मुतशाबिहातुन। मुतशाबिहात उखर तो चलिए जमा मुकस्सर है ठीक है, जमा मुअन्नस सालिम भी लग सकती है, जमा मुअन्नस मुकस्सर भी लग सकती है, मुतशाबिहात मिलती जुलती जिनमें आपस में तशाबो हो, अभी आगे तशाबो का लफ्ज आ रहा है बाब तफाउल से, एक दूसरे से तफाउल में बाहम होगा, तो इसका मायना हुआ तशाबो का बाहम एक दूसरे से मिलते जुलते होना, सूरत में आपने पढ़ा था इन्नल बकारा तशाबहा अलैना, वो अलैना के इस्तेमाल और है, वैसा मैंने तशाबहा का है बाहम एक दूसरे से मिलता जुलना होना, उससे फिर इस्म फाइल बनेगा मुतशाबिहातुन जमा की मुतशाबे हूना मुतशाबे हाथुन यून, नहीं शुबा का मैंने नहीं है, मादा वो है जरूर लेकिन तशाबहा शुबेहा होता तो ये मैंने हो सकता था, इश्तबहा होता हो सकता था, बाब इफ्तेआल और बाब तफ़ईल में खासतौर पर मजहूल में ये मैंने हो सकता है, लेकिन तशाबहा और शाबहा मुफाला और तफाल में शुबा का मैंने नहीं होता है, मिलते जुलते होने का मायना होता है बाहम एक दूसरे से मिलते जुलते होने, तफाउल में तो खैर ये मायना बाहम वाला बहुत ज्यादा क्लियर होता है। फअम्मल लज़ीन फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, अब ये मुहकमात क्या है, मुतशाबिहात क्या है, उनकी तफसील और क्यों अल्लाह ने बाद मुतशाबिहात रखी, और फिर आगे जैसे आ रहा है मुतशाबिहात के मायनों पर भी नहीं उलझना है तो फिर फायदा क्या है, ये बहसें आपको तफसील में मिल जाएगी अच्छे खासी लंबी चौड़ी। فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ أَمَّا کا میں نہ فارسی میں شاہ صاحب نے تو اما ہی کیا اردو میں اس کا کوئی موضوع لفظ ایسا نہیں نظر آتا، عموماً اس کے جواب پہ پھر ایک فے آتی ہے، اما جو ہے فلاں تو، جیسے اردو میں اس طرح ہم شروع کرتے ہیں نا، اور جو یہ کمرہ ہے تو اس کا تو یہ کام ہوگا، ان مینوں میں جو یہ ہے اور پھر تو آئے، یہ عربی میں اس موقع پر اما استعمال ہوتا ہے، اس اما کا کوئی معنی اردو والوں نے کیا کیا ہے پتہ نہیں، میں فارسی میں شاہ صاحب نے تو اما ہی کر دیا، وہ پس کا ترجمہ تو فے کا ہو گیا، اما کا تو کوئی نہ ہوا، پس آیا وہ لوگ،
پس آیا وہ لوگ
آیا تو
آیا کے
پتا نہیں یہ کس طرح سے معاورہ ہے، اس کی بجائے بات تو یوں ہے، اور جو تو ہیں ایسے تو ان کا قصہ یہ
ہے،
وہ فا کا ہو گیا، اما کے لیے کوئی موضوع عربی لفظ نہیں ہے، اصل میں اس کو تفصیل کا کہتے ہیں، یعنی ایک بات کو کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے اور شروع میں آتا ہے عجیب جو تو یہ ہے نا، پھر آگے ان کی تفصیل آتی ہے، تو ان کا قصہ یہ ہے، تو ایسے موقع پر انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے ایز ریگارڈز، یہاں تک تعلق ہے فلاں چیز کا، انگریزی میں ایک استعمال ہوتا ہے اس طرح، آیا کیسے،
یہ
تو سوال ہوا، یعنی سوال کے طور پر
کسی کی آیا
وہ یہ ہے، میں تو دیکھیے نا، مثلاً کہے کہ جو تو ہے نا یہ میز، تو یہ کل یہاں سے تو آتا ہے اردو میں اس کے جواب پر، آیا کے جواب پہ تو آتا ہے نہیں آتا، ہم وہ تو آیا دوسرے معنی میں، اس کے جواب پہ تو ضرور آنا چاہیے، तो यहां जो आगे फे आ रहा है ना, तो के मैंने उस पर लगेंगे। अब फारसी में कोई इसकी तो की तुक नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अब एक एक जुबान के अलग अलग तरीका होता है। अब मसलन अंग्रेजी में अम्मा का तो तर्जमा आ जाता है एज रिगार्ड्स, विद रिगार्ड टू कहते हैं, लेकिन आगे जो उसके पास आता उस पर कोई लफ्ज या प्रपोजिशन नहीं लगता, लेकिन अरबी में लगता है। अम्मा आए फिर उसके आगे जवाब पे तो आता है। इसका उर्दू में तर्जमा यूं ही बनता है, और जो तो है ना फलां, तो उसका किस्सा ये है, यूं आता है एक तो फिर आगे आता है, और पहले जो कर लीजिए, जो और तो के साथ इसका कुछ तर्जमा होता है। फअम्मल्लज़ीना, और जो तो है ना वो लोग, फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में ज़ैग़ है, फयत्तबिऊना, तो वो तो ऐसा करते हैं। तो उर्दू में अगर इस अम्मा और फे को ले तो जो और तो के साथ इसका जवाब आ सकता है, वरना या फिर छोड़ ही दे। आयत के जवाब पे तो ले,
हाँ, दूसरा आदमी ने उसकी डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन
फे कुलू बहम, बस जो तो है वो लोग जिनके दिलों में है ज़ैग, अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम, अल्लज़ीना मौसूल और फी कुलूबिहिम जार मजरूर, और उसकी उसका मुब्तदा ज़ैग़ुन, पीछे ज़ैग़ुन के मैंने कजी के किए गए हैं, ज़ाग़ा यज़ीग़ु, टेढ़ा होना, ये लकड़ी वगैरह के टेढ़े होने के लिए नहीं आता, अमूमन दिल के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ज़ाग़त, ज़ाग़त अनहुमुल अबसार भी आया है, नजरें टेढ़ी हो जाना है। फिर फैयत तबेऊना का क्या किया है, फिर फैयत तबेऊना का क्या किया, उसने कहा फे को छोड़ गए, पास किया होगा, फिर दोनों जगह पास हुआ, पास जो तो वो है, तो वो ऐसा है, तो बगैर उर्दू में तो नहीं बनता।
बस आया वो लोगों के बीच,
आया वो लोग नहीं बनता, ठीक बात यह कि जो तो वो है, बस जो तो वो है जिनके दिलों में बीमारी है, तो उनका किस्सा ये है, तफसील बयान की है। ज़ाग़ उन ज़ाग़ मैंने टेढ़ पन किया जाता है। कुरान करीम में दिल की मुख्तलिफ बीमारियों और कैफियतों जो रूहानी है, कहीं ज़ाग़ कल्ब आता है, कहीं मरव कल्ब आता है, कहीं कसावत कल्ब आता है, कहीं रैन कल्ब आता है, दिल पे जंग चढ़ जाना, फिर सूफिया इसकी मुख्तलिफ सूरत, क्योंकि कुरान है तो सही ना, दिलों का खोट, दिलों का जंग, दिलों की कजी, दिलों की सख्ती, हाँ, ये कोई नफसियाती कैफियात हैं कुरान करीम में जो दिल के ज़िमन में आई हैं, तो उनमें से एक ज़ैग़ भी है, दिल में कजी, ये सब सोच वगैरह के अंदाज हैं। है टेढ़ा होना, ज़ाग़ा यज़ीग़ु, टेढ़ा होना, नजर का एक ही तरफ फटे रह जाना, चलना ना, इसके लिए भी आता है ज़ाग़त अन्हुम अल-अबसार, उनकी आंखें टेढ़ी हो गई, यानी जैसे एक तरफ ही लगी रह गई है खौफ के मारे, दूसरी तरफ है ज़ैग़ तो नहीं है, बात ज़ाग़ा यज़ीग़ु माज़ी मुज़ारे है, बा अयबीओ की तरह, नहीं नहीं वो तो फारसी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है, इससे नहीं नहीं उसका इससे कोई नहीं ताल्लुक, वो फारसी लफ्ज है, वो अरबी लफ्ज ही नहीं है। अलबत्ता ज़ाग़ल बसरो वमा तगार, इस तरह से ज़ाग़ा का मैंने टेढ़ा होना या फिर अपना काम न करना, इन मनों में आंखों के लिए या दिल के लिए आया, तो जिनके दिलों में टेढ़ है, कजी है, यानी खराबी है कोई नीयत में, टेढ़ा होना एक मायना ये भी है, टेढ़ा होना, अपना फंक्शन पूरे तौर पर ना करना। फैयब तब होना, बस वो तो पैरवी करते हैं, तो वो तो पैरवी करते हैं, तो तर्जमा जो के बाद तो कुछ करना चाहिए, तो वो तो पैरवी करते हैं, मातशा बाहा मिन हो, उसकी ही उसकी करते हैं, मा तशाबहा, ये मा यहां मफूल है या तबेऊना का, मा तशाबहा पूरा फिक्रा, जो मिलता जुलता हुआ, ये माजी का सीगा है, तशाबहा या तशाबहो, मिन हो उसमें से, हो की जमीर किताब के लिए है, आयात के लिए होती तो मिन हा होता, तो जो उसमें से, क्योंकि ऊपर बताया किताब में से कुछ मुहकमात हैं कुछ मुतशाबहात हैं, तो फिर मुन हो उस किताब में से जो मुतशाबे है जो तर्जमा कर ले मातशाबा, जो मुतशाबे हैं यानी फैतबून मुतशाबे हन, यू है मातशाबा मिन हो उस किताब में से। इब्तगा अलफितनत, इब्तगा मफूल लहू है फितना तलाश करने के लिए, वब्तगा तावील ही और उसकी तावील तलाश करने के लिए, ये दो उनके मकासद हैं जो दोनों मफूल लहू है। फितना नहीं भाई, पहले बयान के बाब मुफाला और तफाल में कोई शुबा का मायना नहीं है, मुशाबे मिलते जुलते होने का मायना
है।
शुबा डालती है शाबाहा हूं, हमने तो ये नहीं पढ़ा, ये शुबा डालती किसने किया तशाबाहा का मैंने शुबा डालना होता ही नहीं, शब्बाहा या इश्तबाहा के मैंने में तो ये आ सकता है, तशाबाहा का ये मैंने नहीं। और फिर तशाबाहा में तो बाहम का लफ्ज मैंने जरूर करना होता है जो कि आपस में मिलते जुलते हैं, इसमें तो मुशारकत आती है, यानी मा तशाबाहा मिन हो अल आखरा, जो एक दूसरे से फिर मुशाबत रखती है। बाब मुफाला बाब तफाल में शुबा डालना और ये नहीं है मैंने, बाब इफ्तिआल और बाब इफ्तिआल में तो होता ही है मैंने, लेकिन बाब तफईल में एक मैंने ये भी होता है खुसूसन मजहूल में, शब्बाहा के मैंने तो ये भी हो सकते हैं उसको उससे तशबी दी, लेकिन शुब्बिहा का एक मैंने ये हो सकता है शक में डाल दिया गया, और इश्तबा का मैंने है तशाबाह का ये मैंने नहीं है। हां अगर तशाबाहा अला आए फिर गुंजाइश निकलती है, इसके साथ अला का सिला जैसे वहां आया था इन्नल बकरा तशाबाहा अलैना, गायें हम पर मिलती जुलती हो गई हैं, लफ्जी मैंने वहां भी हुई है, लेकिन अलैना की वजह से कि हमारे लिए तो सब मिलती जुलती है, इसलिए शुबा है कि सही मुराद को तशाबाहा के बाद अला आए तो गुंजाइश है इस सिला के साथ, उसके बगैर नहीं। जो मिलती जुलती है वो तो उन्हीं के पीछे चलता है, और फितना की तलाश में और तावील की तलाश में। वो तो मैं ना करूंगा ना, अभी तो हमने उसका तर्जमा भी नहीं किया। तावील है अव्वला यो अव्वल उसे मस्दर, और फिर तावील का मैना होता है किसी चीज को मोड़ देना और एक मैने अंजाम तक पहुंचा देना। इन मैनों में तावील का मैना है उसके आखिरी मैनों तक पहुंचना, ये बनता है मैना। इन तावील यानी लफ्जी मैना है किसी चीज को किसी चीज की तरह मोड़ना या अंजाम तक पहुंचा देना, यानी उसके एंड तक ले जाना, इस लिहाज से उसके आखिरी मैना दरियाफ्त करना, ये इसमें मैना आता है कि आखिरी मैना उससे है क्या। इन मैनों में ये अच्छी बुरी दोनों सेंसेस में आया और इन्हीं दोनों आयतों में आया। एक तो तावील का मैना है कि उसका आखिरी और सही मैना क्या है, वो तावील है उसकी, इस लिहाज से तावील और तफसील फिर हम माना इस्तेमाल किए हैं हमारे मुफस्सरीन ने, किताबों का नाम ही तफसीरुल कुरान के बजाय तावीलुल कुरान रखा है, क्योंकि उससे मुराद है बहुत कुछ। वैसे लंबी चौड़ी तफसीर भी की गई है कि लफ्जों को खोलना तफसीर है और मानों की तरफ जाना और वो तावील है, इनमें फर्क भी किया उन्होंने कि फर्क क्या है। बहरहाल फिर तावील का मैना बनता तो यही है कि आखिरी मैना क्या तलब मुराद किया है जी, असली मुराद, लेकिन हकीकत भी हुई असली मुराद है। लेकिन बात यह है कि फिर यहां तावील दो वो हकीकत की तलाश में, बगैर तो ये हकीकत की तलाश कौन सी बुरी चीज है, ये उनको क्यों मुजम्मत की जा रही है। इसमें तावील का मैना मैंने पहनाने का भी आ जाता है कि अपनी मर्जी के माना पहनाना, यानी एक मुकर्रा मानो तक उसको ले जाना कि जी ये माना है। तो माना की तलाश भी इसका माना है और माना पहनाना भी इसका माना है। ये बनते हैं इसके दोनों माने और यहां इसी आयत में दोनों मानों में आया। ये जो वक्तगा तावील है, अगर हकीकत की तलाश है तो ये मुसम्मत नहीं होनी चाहिए, तो वो तो फितने की तलाश है और हकीकत बजाहिर कहते ही है कि हम असल माना ढूंढ रहे हैं और हकीकत में नियत बाद होती है। इसलिए उर्दू में माना पहनाना जिसे कहते हैं वो माना बन सकता है। अरशाह साहब ने किया तलब मुराद, मुराद याद रखिए, मुराद का माना अरादा युरीदो से, मुरीद मैंने इरादा करने वाला और इसम मफूल होगा मुराद जिसका इरादा किया गया। तो माना है मुराद से मतलब ये होता है कि कहने वाले का मतलब क्या था, यह है माना। यानी इबारत के चार पांच माना, यहां कौन सा मुराद है, किसका इरादा किया गया है। अब अल्लाह ताला के बारे में कहना कि अल्लाह की मुराद ये थी, ये बड़ी ज्यादती है। बाल ताबियों से रिवायत है और ताबियों से वो तो डरते थे, ये कहते हुए वो तो मैंने करके कहते थे अल्लाह बेहतर जानता है और हमने गलत किया तो अल्लाह माफ करे। इतनी दीदा दिलेरी करना कि अल्लाह का इससे मुराद कब्रें ही मुराद है, ये बहुत बड़ी धांधली बनती है ना। क्योंकि माना है मुराद, शाह साहब ने तलब मुराद किया, मुराद का माना है कि इरादा क्या था कहने वाले का, उसका तायुन कर लो। तो उन मानों में ले तो माना मुराद तो बहुत बड़ी चीज है, तो वो उस माना मुराद की तलाश के लिए बजाहिर गोया के उसकी मुतशाबेहात के पीछे चलते हैं जी, उसकी हकीकत क्या है। आगे ही कुरान में आता है वमा यालम तअवीलहू इल्लल्लाह, और उसका जो माना मुराद है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, यानी हकीकी माना उसका। नक्शरी की किताब में भी तावील आता है, अक्सर आप पुरानी तफसीरें देखिए तावील का लफ्ज उसमें, असरार तावील इस तरह के नाम आते हैं, क्योंकि वो तावील का मैंने तफसीर लेते हैं फिर इनमें फर्क करते हैं। कुरान में फसरनाहो का लफ्ज भी आया है एक आध जगह और तावील का ज्यादा आया है। फिर तावील के मैंने अंजाम के भी होते हैं, यौमयाती तावील हूं, जिस दिन के इस चीज का अंजाम सामने आ जाएगा। तो अंजाम मानों के लिहाज से भी है कि माने आखिर जाते कहां है, वो मानों का अंजाम है। इन मानों में अव्वल यू अव्वलों का मैंने अंजाम तक पहुंचा देना जो है वो क्यामत के बारे में जो कुरान में आया योम या अतीता अवील हूं, जिस दिन फिर इन सब बातों की असल हकीकत सामने आ जाएगी, अंजाम सामने आ जाएगा। तो वो हकीकत तलाश करते उत्तर के लिए वो करते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये यहां मजमूम मानों में है, तो कोशिश ये करते हैं कि गोया हकीकत तलाश कर रहे हैं, हालांकि वो पहला लफ्ज है फितना का, यानी फितना बजरिया तावील, यूं कह लीजिए दोनों लफ्ज आए ना, इब्तगा अल फितना वब्तगा तावील, यानी वो फितना चाहते हैं बजरिया तावील, बहाना तावील का है, मुराद असल मकसूद फितना। वमा यालम तावीलहू, ये मा नाफिया आया है और नहीं जानता उसकी तावील को मगर अल्लाह, यानी अल्लाह ही को मालूम है। तो हकीकी माना अब ये किन आयतों के होते हैं और वो क्या है, उससे क्यों फिर कुरान में आई है जबकि उनका माना ऐसा है, इसकी बहुत सी बातें की जा सकती हैं। सर सैयद ने अपनी जगह कहा, लेकिन एक सिंपल सी बात है हम कहें कि अल्लाह के कलाम में, आखिर वही का कलाम है, जरूर ऐसी बातें होंगी और यकीनन बल्कि होंगी जो इंसानी फैन समझ नहीं सकता, क्योंकि आप कलाम चाहे अल्लाह ही का क्यों ना हो करेंगे तो उसके जेन के मुताबिक जो हमने बैठा है तो बंदों के मुताबिक बात किया, उसमें खुदा जाने उन्हीं लफ्जों में क्या हकायक बयान हुए, उस वक्त उनको ना पता चले, बाद में जाहिर हो लफ्ज भी हुई हो, इसलिए यहां बहुत बड़े हकायक का उन्हीं लफ्जों में बयान करना जिसको इंसान समझ सकते हैं और दरअसल वो मुराद ना हो, ये तो आम अदब में जरूरत पड़ती है। अल्लाह के कलाम में तो बड़ी बात है, अदब में ऐसी बातें आप बच्चों के लिए लिखने लगे तो फिर कुछ और दिक्कत होगी। तो चूंकि ये अदब आलिया की एक किस्म है और खुदा का कलाम है, इसमें ऐसे हकायक हैं जिनकी अभी बात समझी नहीं जा सकती, इसलिए ऐसी आयतों का होना भी जरूरी था, ये निरा बच्चों के लिए ही कलाम नहीं है। और जहां तक उन किताबों उन आयात का ताल्लुक है, उनका ताल्लुक ऐसे अहकाम और हिदायत से भी नहीं है जिसकी बिना पर गिरफ्त होगी। मसलन क्यामत को माना, ठीक है मान लिया, ये कि कब आएगी क्यों नहीं, बेवकूफ के बच्चे पता किया कब आएगी, इसका जवाब दो, ये तो नहीं गिरफ्त होगी कि तुम्हें ये क्यों नहीं पता चला कब आएगी, हजारों हकीकतें जो इस तरह छुपी रहेंगी। तो इसलिए तावील की गुंजाइश तो रहेगी और ऐसी आयतें होनी चाहिए बल्कि कलाम इलाही में। आगे आता है वर्रासिखून फिल इल्म यकूलू, बाद में ये कहा है कि अल्लाह पर वक्फ लाजिम नहीं है और वमा यालम यानी हु तावील हु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म, अल्लाह ही जानता है और जो इल्म में पक्के हैं वो ही जानते हैं उसकी तावील को। बाज ने यूं भी मैंने की है और बाद ने कहा कि अल्लाह पर वक्फ लाजिम करो और वर्रासिखून फिल इल्म को आगे मुब्तदा बना, क्योंकि यकूलूना में भी फिर अगर वर्रासिखून फिल इल्म पे वक्फ करे तो यकूलूना से पहले हम हुम लगाना ही पड़ेगा ना, फिर कोई मुब्तदा तो दरकार होगा, वो हम माजूफ मानेंगे। और फायल इस तरह से अल्लाह और अर्रासिखून फिल इल्म, यही नहीं कि सिर्फ अल्लाह जानता है बल्कि जिनको अल्लाह ने पक्का इल्म दिया, रासखा यारसखो का मैंने होता पांव मजबूती से जमा लेना, बल्कि नहीं वो तो रसा यारसू है लंगर डालना जहाज का, लफ्जी मैंने इसका पांव जमा लेना है। चुनांचे शाह साहब ने रासखून का तर्जमा किया साबित कदम है जो इल्म में, रासिख साबित कलम कदम, ये हमारे यहां लफ्ज इस्तेमाल होता है रासिखुल अकीदा पक्के अकीदे वाला, यानी जिसके खुद पर लफ्जी तर्जमान मजबूत, बल्कि मजबूत कभी पांव जिनके जमे हुए, बाकी बॉडी की मजबूती नहीं इसमें रासिख में होती, रासिख के मैंने यही है जिसके पांव मजबूती से जमे हुए उखड़ नहीं सकता गिर नहीं सकता, मैं नहीं इसके लिए सिर्फ मजबूती के मैंने नहीं है। तो जिनके पांव जमे हुए हैं इल्म में यानी उखड़ने के नहीं, जैसे डीप रूटेड कहें या कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन होगी इल्म में, वो भी जानते हैं, या फिर वक्त लाजम करें तो कहें जो रासिखून फिल इल्म है वो तो ये कहते हैं, दोनों तरह की गुंजाइश है। हमारे यहां अमूमन अल्लाह पे वक्त लाजम है पर रासिखून फिल इल्म को आगे मिलाते हैं, लेकिन इबारत के लिहाज से गुंजाइश मौजूद है। गोया के जिन्होंने कहा वर्रासिखून फिल इल्म भी है, इसका मतलब यह कि कुरान करीम की ये नहीं कि कोई ऐसी आते हैं जिनकी हकीकत कोई भी नहीं जानता हो, वो तो फिर बात ही एक तरह से फजूल ही बनती है। कोई पक्के इल्म वाले हैं जो अपने अकीदे से भी नहीं चलते और उसकी बात को भी जानते हैं, ऐसे हैं जरूर, थोड़े हैं या ज्यादा हैं, लेकिन ये कि इंसानों में से हैं जो उसकी हकीकत से भी वाकिफ है, गुंजाइश यूं निकल आती है। हाँ तो मुतशाबहात ही की है ना बात, तो मुतशाबहात ही की हो रही है ना, ये जो है ना तावील ही की जमीर ये मुतशाबहात के लिए ही बल्कि मातशाबह मिनहु के लिए है, और मातशाबह मिनहु किताब में से जो मुतशाबे है उसी का नाम मुतशाबहात का है, लेकिन यहाँ का मातशाबह मिनहु जो किताब में से मुतशाबे है यानी जो मुतशाबहात है, क्योंकि यहां मातशाबा हाफेल आया था उसके मुताबिक जमीर तावील के बाद हुआ ही है, इस मां के मुताबिक जो मातशाबा है इसके मुताबिक तावील ही तावील हु की जमीर आई है, यानी वो जो मुतशाबे है किताब का उसकी तावील, तो बात तो उसी की हो रही है कि जिन आयतों में ऐसी वाज बात नहीं होती कोई दो, इसीलिए मुतशाबे का एक मायने ये भी किया गया है कि जिसमें एक से ज्यादा मानों की गुंजाइश है तावील की, मिलते जुलते मैंने ये भी और वो भी, कुरान में मुतशाबे लफ्जों के मिलने के लिहाज से भी कहा गया किताब हम मुतशाबे हम मसानिया, कुरान उस लिहाज से भी मुतशाबे है कि इसमें हुई इबारत हुई लफ्ज एक ही वाकया खुदा जाने मिलते जुलते लफ्जों में पांच तरह बयान हुआ, देखा जाए तो वो लफ्जों का तशाबो एक मानों का तशाबो हो सकता है, यहां मानों के तशाबो की बात है कि मिलते जुलते माना है या एक से ज्यादा माना जिसके हो सकते हैं, तो रासिखून फिल इल्म तो उस या उसको वो जानते हैं, भाई यकूलूना आमन्ना बिही, वो तो बस इस बात के कायल है कि हम सब पर ईमान लाते हैं समझे या ना समझे, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह सब रब की तरफ से, हर आदमी की हर दफा हर स्टेज पे वो सारी बातें नहीं समझ सकता, अगर बच्चा बड़ों की बातें नहीं समझ सकता, जाहिल इल्म को पढ़ने के बाद समझ सकता है, फिर इंसानों में भी ये फर्क रहेगा, तो वो बैसियत मजमू मानते हैं ये सब अल्लाह की तरफ से है, हो सकता है हम उसको ना समझे नहीं لیکن جن احکام کو سمجھ کر جس پہ بعض پرسوں نہیں ہے, یہ یقینی بات ہے کہ جس آیت کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس پہ بعض پرس بھی نہیں ہوگی. بعض پرس تو اسی پہ ہوگی جو آپ کے اختیار میں تھا اور کرنے کا تھا. ٹھیک ہے, علمی سطح اور اونچی لیول پہ جانے کی باتیں. اب قرآن مجید میں کس کس تعویل کی بات کریں؟ یہی جو نشانات قدرت ہیں انہی کے معنی اپنی اپنی سطح پہ مختلف لوگ سمجھ سکتے ہیں. پہاڑ ہیں, جانور ہیں, ہواؤں ہیں, ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو اللہ کی قدرت اور طاقت تو اس میں ایک بدوی اور جنگلی کو بھی نظر آتی ہے اور سائنٹسٹ کو بھی نظر آتی ہے. تو تشابہ کے لحاظ مقام ہوتے ہیں الگ الگ. کل من عند اللہ یعنی کل ذالک یا کل آیت, ان معنوں میں مضاف اس کا اڑا دیا ہے, پہلے بھی آیا کل سب کے سب, یعنی کل ہو یا جو بھی جس کے لیے بھی ضمیر مناسب نہ ہو. من عند اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, متشابہ بھی محکم بھی ہمارا ایمان ہے, سب اللہ کی طرف سے. وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے, یہ یذکر یا تذکر ہے, یہاں تے کو ذال میں بدل دیا گیا ہے. الا اولو الالباب مگر عقلوں والے. ہم الا کو ہٹا دیں تو ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور عقلوں والے ہی نصیحت حاصل کرتے. الا کے بجائے مگر کی بجائے آپ ہی سے اردو میں وہ زور پیدا کر سکتے ہیں جو اس دو نفی اور الا کے استثناء میں تھا.
اور اس کی ایک بات مثال آپ نے کل
درست کروا دی, یہ تو کئی میدانوں میں اب آئے گا تشابہ کا. کس کس قسم کی مثال دیں؟ آپ نے پڑھنا تو کسی تفسیر میں پڑھ لیں, متشابہ آپ پہ بحث اچھی خاصی کی ہوئی ہے, مودودی صاحب کے ہی دیکھ لیں, اس میں ہی دیکھ لیں, کوئی اور کوئی اچھی اردو تفسیر ہی دیکھ لیں کہ متشابہات سے کیا مراد ہے. اگر متشابہات کے معنی دریافت نہیں کرنے تو قرآن میں ان کے آنے کی وجہ کیا ہے, کیا فائدہ ہے, ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال آپ کو اس کے جواب مل جائے گا. زیادہ لمبی بات ہو جائے گی, ہم تو اس میں جائیں گے. آ جاتا ہے, آ جاتا ہے جی خود یہ, یعنی جو چیز ہے بات اصل یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اس میں ہر سطح کے, یہ نہیں کہ صرف ابتدائی درجے کے لوگوں کے, اس لیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تھنکنگ تک آدمی چلا جائے اس میں گنجائش رہے گی, جس کے معنی کو ابتدا میں کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا. متشابہات تو اس طرح سے رہتی ہیں کہ آیات کریشن جو ہے مثلا کونیہ, ان میں بہت سی ایسی آیتوں کی مثال ملتی ہے کہ پہلے نہیں کوئی معنی ہمارے لیے واضح ہوتا. تیرتے پھرتے ہیں ساتھ. وما یذکر الا اولو الالباب, اس میں الا کے بعد جو رفع آئی ہے وہ پہلے جملے کے منفی ہونے کی وجہ سے ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا, یعنی یہ بھی یقولون کے ساتھ ہے, وہ سب بات کو مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے اللہ پر, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر. ابھی آپ نے پڑھا زاغ یزیغ ٹیڑھا ہونا, اس کو باب افعال میں لے جائیں, ازاغ یزیغ ٹیڑھا کر دینا, ٹیڑھ پیدا کر دینا, کجی پیدا کر دینا, تو اس سے یہ فعل نہیں ہے لا تزغ, جو کہ اصل میں ہے لا تزغ تفعل کے وزن پر, درمیانی وہ یہ وغیرہ جو ہے وہ گر جاتی ہے. نہ ٹیڑھا کر قلوب اس کا مفعول ہے, ہمارے دلوں کو بعد از, بعد اس کے, یہ از اس طرح الگ لکھا ہوا ہے, کبھی کبھی یہ حین از, پھر وہ اذن کہتے ہیں, حین اذن, وقت اذن, یوم اذن, کچھ تقریباً انہی معنوں میں ہے. از میں نے جب کے, بعد بعد ظرف ہے, از جب کے, اور ظرف مضاف ہو کے آیا, جیسے کہیں بعد الظہر, بعد العصر, تو یہاں ہے بعد از ہدیتنا, از ہدیتنا جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دی, اس کا معنی تو ہوا یہ, از ہدیتنا جب کہ, از ظرف ہوتا ہے نا, اسی لیے اس کے پہلے اذکر لگانا پڑتا ہے, یہاں اذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے, بعد کے بعد آ رہا ہے. از جب کہ ہدیتا, تو نے ہدایت دی نا ہم کو, جب کہ تو نے ہدایت دی ہم کو, اس کے بعد, یعنی بعد ظرف ہے اور اذ ہدیتنا کا مضاف ہے اور اذ ہدیتنا جملہ مضاف الیہ کے درجے میں آیا ہے. بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی, یا کہہ لیجئے ہمیں ہدایت دے چکنے کے بعد, یوں کر لیں ہمیں ہدایت دینے کے بعد, پھر اسی طرح کے بعد کا ترجمہ ہو جائے گا. ہدایہ دی پڑھ چکے ہیں آپ, ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. وہب لنا اور تو ہم کو عطا فرما, واو میں نے اور وہب یہب سے ہب فعل امر ہے, یاد رکھیے پہلی واو اور ہے, واو کا میں نے اور ہے, یہاں عطف ہے بالکل. ہب تو عطا فرما, ہب ہبا ہبو ہبی ہبا ہبنا, یوں بنے گا وہب یہب فتح یافتہ ہو کتاب. ہب اصل میں کیا تھا اگر ہم فتح یافتہ لیں, ایب ہب تھا, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہابا میں مضارے میں وہ یوہبو رہتا ہی نہیں, واو ہی گر جاتی ہے, مضارے میں گر جاتی ہے تو پھر فعل امر اسی سے بناتے ہیں علامت مضارے گرا کر, واو تو ہوتی ہی نہیں, علامت مضارے گرائی سیدھا متحرک آ گیا, نہ کوئی حمزہ وصل کی ضرورت رہی نہ کچھ. ہب اور عموماً اس کے بعد واو میں نے تو اور ہے بھائی, فتح یافتہ ہے وہابا یہب فتح سے آتا. اچھا اور اس کے بعد عموماً لام کا صلہ آتا ہے, ویسے اس کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے غالباً, وہابا ہو و وہابا لہو غالباً دونوں طرح ہیں, ڈکشنری میں تو قرآن میں ویسے لہو کے ساتھ ہی آتا ہے وہابا وہابا ہو, شاید آتا ہو ڈکشنری میں, قرآن میں کوئی اس کی مثال میرے ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال وہابا لہو ہب لنا ہب لی یہ قرآن میں لام کے صلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے, ہم کو عطا فرما, یعنی یوں نہیں آتا ہب نا, لام کا صلہ نہ ہوتا تو پھر تو یوں فیل ہونا چاہیے تھا نا, ہب نا ہم کو دے, لنا وہب لہو ورباتا ہے اس کو عطا کیا. وہب کا معنی عموماً ہوتا ہے بغیر کسی یعنی اس کا حق نہیں بنتا اور ویسے ہی دینا اور کافی مقدار میں دینا, ان معنوں میں آتا ہے. ہب لنا ہم کو عطا فرما, اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں مل لدن کا اپنی طرف سے, یہ لفظ ہے یہاں لدن, لدن کے معنی تقریباً ہوئی ہے جو عندہ کے ہیں قریب قریب, ان میں بالکل معمولی شیڈ آف میننگ میں فرق کرتے ہیں لوگ, مثلاً وہ کہیں گے کہ ہندی کتابن, اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً کہ گھر پڑی ہے اس وقت تو نہیں, اور پھر جو لدن وغیرہ سے آیا تو اس کا معنی اس وقت بھی پاس ہے, اس قسم کے فرق کرتے ہیں ڈکشنریوں والے. بہرحال اس لدن کے لیے ایک لفظ لدا بھی آتا ہے ہدن کی طرح, لدن لام دال اور یہ اور اوپر دو زبرے, لیکن چونکہ اس کے معنی کے پاس کے ہوتے ہیں, آئے گا تو مضاف ہو کر ہی, تیرے پاس میرے پاس اس کے پاس زید کے پاس کچھ تو آئے گا, کے پاس ہی اس کا معنی ہے, تو آئندہ کا معنی جیسے کے پاس ہے صاف ظاہر ہے وہ مضاف ہو کر ہی آتا ہے نا, ویسے تو اس کو کوئی معنی نہیں بن سکتا, اس لیے پھر لدن ہوگا تو مضاف ہوگا تو لدے ہو جایا کرے گا, لدے یوں آ جائے گا, جیسے ہدن کا ہدا رہ جاتا ہے وہ بھی لدا رہ گیا, لیکن اس کو لدے الے کی طرح پڑا جاتا ہے. تو لدن کا معنی کے پاس, مل لدن کا اپنے پاس سے, یعنی من عند کا, تو لدن کا معنی کے پاس, مل لدن کا اپنے پاس سے, یعنی من عند کا کے معنی میں آیا ہے تقریباً کا تقریباً, اور عند کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے کے پاس, مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں ہندی کے اور اگر کہیں لدنی کتاب یہ شاید درست نہ ہو, لدیا کتاب درست بنتا ہے, ہو سکتا ہے لدنی ہم اپنی طرف سے, یہ آیا قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا ہم لدنا علما, फिर ये इसी लदुन के पास से यानी लदुन का यानी लदुनिल्लाह अल्लाह के यहां से फिर इसी से इल्म लदुन्नी वगैरह वो सूफिया इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह के यहां से मिलने वाले मिल लदुन का अपनी जानिब से अपनी तरफ से रहमतन एक रहमत या बड़ी रहमत हमें अता फरमा अपनी तरफ से। और इसमें मिल्लत उनका क्यों आता है कि हम हकदार नहीं है या कुछ मुख्तलिफ मायने हो सकते हैं। इन्ना का अंतल वहाब इन्ना का इस्म और इन्ना और उसका इस्म अंतल वहाब पूरा जुमला है जिसमें अल वहाब खबर है मारफा तू तू ही वहाब है अल की वजह से खबर मारफा करे और चाहे तो अंत को जमीर फासिली मान ले यूं भी हो सकता है यानी अंतल वहाब जुमला माने और कहें कि इन्ना का की खबर है और या इन्ना कल वहाब था असल में अंत जमीर फासिल आ गई जैसे उलायका हुमुल मुफलिहून इस तरह से तो बेशक तू ही वहाब है उर्दू में तर्जमा चाहे जमीर फासिल माने चाहे एक अलग जुमला माने उर्दू में तर्जमा यूं ही है बेहतर के तू ही दाता है देने वाला है वहाब मैंने अता कुनिंदा और अपना इन्ना का जाम उन्नास ए हमारे रब वही चल रहा यकूलूना की बात मुनादा मुजाफ होकर बेशक तू जाम उन्नास लोगों को इकट्ठा करने वाला है। इकट्ठा करने वाला है यानी जमा करे का के मानों में है जाम उन्नास मुस्तकबल के मानों में है यानी इन्ना का यजम उन्नास तू लोगों को जमा करेगा ले यौमिन उस दिन के लिए जो के यौमिन के नकरा की वजह से ला रैबा फी है नहीं है किसी किस्म का शक उसमें तू लोगों को जमा करेगा उस तू जमा करने वाला है लोगों को उस दिन के लिए कि जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। एक तो ये आया है कि ले यौमिन क्यों है गोया कि ये इला या फी के मानों में है या ले के मैंने है के लिए तो फिर ये भी आ सकता है कि ले हिसाब यौमिन यानी असल तो किसी और सिर्फ दिन के लिए तो नहीं ना जमा करना ले हर्ज यौमिन ले हिसाब यौमिन तब तो ले का मैंने बनता कि तू लोगों को दिन के हिसाब के लिए जमा करने वाला या फिर लाम का मैंने माने फी कि तू लोगों को एक ऐसे दिन में जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं। फी है की जमीर जो है दिन के लिए भी हो सकती है कि उस दिन के वाकयों में शक नहीं और चाहे तो जमा के लिए जमीर इसको मान ले कि जमा करने में कोई शक नहीं यूं भी हो सकता है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद बेशक अल्लाह ताला हरगिज पीछे नहीं छोड़ता वादे को। अखलाफा युखलिफु का लफ्ज ही मैंने अपने पीछे छोड़ देना किसी चीज को फिर खिलाफ वर्जी के मानों में फिर आता है ज्यादा तो ये कि फी की जमीर यौम के लिए ही हो दूर की बात है कि उस जमा को भी लगाएं कि जमा होने में कोई शक नहीं है लेकिन जाहिर तो यही है कि वो दिन जिसके बारे में कोई शक नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद अल्लाह ताला खिलाफ वर्जी नहीं करता वादे की मीआद मिबआद है असल में तो इसमें आला का मायना है लेकिन ये ज़र्फ के मानों में या शायद मस्दर मीमी के मानों में इस्तेमाल आता है वादा करना इसीलिए शाह साहब ने इसका तर्जमा ही वादा किया। तो अल्लाह ताला वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता। ये यहां इन्ना का दोबारा क्यों नहीं कहा तफसीर वाले तो बहस करते हैं ना कि इधर कहा इन्ना का जानो यहां यूं क्यों नहीं कहा इन्ना का ला तो खुलफुलमिया कहते हैं जी जमीर की बजाय इसमें जाहिर लाने में एक जोर होता है वगैरह वगैरह तो वो अदबी खूबियों में ये बातें आती हैं इनका सर्फ नाव से ताल्लुक नहीं होता। इन्नल्लज़ीन कफरू बेशक जिन लोगों ने कुफर किया लन तुग़नी अन्हुम हरगिज फायदा नहीं देंगे उनको अग़ना युग़नी के मैंने होते किसी को अमीर बनाना या बेनियाज कर देना तो अन के मैने में आता है किसी चीज से बेनियाज कर देना और फिर किफायत करने का मायना भी आता है यानी काफी हो रहना और काम करने काम दे जाना इन मायनों में तो यहां आता है लन तुग़नी अन्हुम हरगिज उनको बेनियाज नहीं करेंगे और माना है मुराद तफसीरी माना किया गया कि उनसे हटाएंगे नहीं लेकिन लंतुगन या जो मुअन्नस का सीगा है इसका फायल है अमवाल हूं व औलाद हूं। अमवाल जब मुकसर है इसलिए तुगनी सीखा मुअन्नस आया नहीं। उर्दू वाले इसका तर्जुमा फायदा देना भी करते हैं लेकिन आगे आ रहा है मिन, इसलिए फायदा देने का मैंने यहां लगता नहीं। अगर मिन ना हो तो कर सकते हैं तर्जुमा कि उनको फायदा ना दिया। यहां है बेनियाज नहीं करेंगे उनके माल वला औलाद हम और ना ही उनकी औलादे मिन अल्लाह अल्लाह से बेनियाज नहीं करेंगे, ये लिटरल ट्रांसलेशन बनता है। फिर मुहावरा तर्जमा या तफसीरी तर्जमा किया जाता है कि अल्लाह से अल्लाह के अजाब को उनसे टाल नहीं सकते, ये है तफसीरी तर्जमा। यानी मिन अल्लाह से मुराद लिया जाए मिन अजाब अल्लाह और लन तो नहीं गया कि मैंने दफा या दफा होकर किया जाए, ये तफसीरी तर्जमा होगा कि उनके माल और उनकी औलादें अल्लाह के अजाब से उनके काम नहीं आ सकते यानी बचा नहीं सकते। इसीलिए शायद सबने लंतोगनिया का तर्जमा किया बचाएंगे नहीं दफा नहीं करेंगे, हालांकि इसका असल मायना ये नहीं है। असल मायना तो हुई है कि उनके उनको लापरवाह नहीं करेंगे बेनियाज नहीं करेंगे उनके माल और औलाद अल्लाह से शयन कुछ भी। ये शयन यहां यानी लंतोगनिया इगना अन किसी किस्म का इगना उनका नहीं होगा। इगना के लिए शय का लफ्ज आता है, शय का लफ्ज अक्सर आ जाता है किसी मफूल मुतलक के लिए भी, जैसे हम कहें आतए तो हूं एहतान और हम कहते हैं आतए तो हूं शयन यानी एहतान शयन। शयन की नसब यहां जो है देखिए ना लंतोगनिया का फाइल तो हुआ अम्बाल हूं और मिनल्ला है तो फिर शयन यहां मफूल भी तो नहीं है कि वो शयन उनका बल्कि कुछ का मायना ही बने तो ये मफूल मुतलक की जगह ही आया है। नहीं फायदा देंगे नहीं बेनियाज करेंगे कुछ भी बेनियाज करना, इसलिए ये शय और अक्सर जगह शयन का लफ्ज का इस्तेमाल यही होता है कि दरअसल वो उस मस्दर की जगह आ रहा था। जैसे यहां अगर शयन ना हो तो हम कहेंगे लंतोगनिया अनहुम इगना अन किसी किस्म का इगना उनके कुछ काम नहीं आएंगे माल और उनके जाने अल्लाह के मुकाबले पर कह लीजिए या फिर तर्जमा हटाएंगे नहीं अल्लाह के अजाब से कोई चीज। अब पता नहीं उर्दू वालों ने अजाब का तर्जमा किया ब्रैकेट बस वो लंतोगनिया का असल मेहनत वही था कि उनको बेनियाज कर देना, ये मेहनत था कि उनको कोई जरूरत ना रहे काफी हो रहे ना, तो कहीं कहीं ये काफी हो रहे ना के मानों में भी आया है, अमीर करना के मानों में भी आया है, यहां बेनियाज करना यानी हटाना। चूंकि ये बेनियाज करना हम कर लेते तर्जमा लेकिन जब मिनल्लाह आया तो अल्लाह से बेनियाज करना यूं तो माल उनके उनको अल्लाह से बेनियाज नहीं कर सकते, फिर मुराद है उसके अजाब से नहीं बचा सकते। वह उलायका और वो लोग ही हम वकूद उन्नार, ये हम को जमीर फसल तो नहीं कह सकते क्योंकि आगे मारफा तो नहीं है, अगरचे मारफा एक तरह से है ही जो मारफा की तरह मुजाफ हो। वह उलायका हम बेशक वो ही लोग वकूद उन्नार आग का ईंधन है, वाओ पाफ दाल वाकादा याकेद के मैंने होते आग का जल उठना वाकादा किन नारो आग जल उठी। वाकादा याकेद यानी हाँ हम पर जोर है ना वो ही तो, क्योंकि इस हम उलायका और फिर हम दो मुब्तदा बना ले या उलायका तो मुब्तदा माने हम वकूद उन्नार फिक्रा फिर उसकी खबर आए और चाहे तो हम एक तरह के जमीर फसल का काम भी दे रहा है। वो ही वकूद उन्नार है, वकूद बने ईंधन, बात कहते हैं कि वकूद बाकायदा याकेद वकूद मैंने होता है जल उठना यानी मस्दर वकूद है लेकिन वकूद ईंधन को कहते हैं, वही है आग का ईंधन यानी आग में जाने वाले हैं। का दाब आले फिरौन दाब मैंने होता है आदत या तरीका, कदाब आले फिरौना आले फिरौन की आदत की मानिंद, ये तो बना लफ्जी तर्जमा। दाब मैंने दाबन दाबन दाल हमजा बे आदत तरीका कदाब आले फिरौन आले फिरौन के दाब की माने क्या है यानी ये काफ की तशबीह जो है किस मामले में है। अब या तो कहें देखिए अब यहां माजूफ कैसे मानना पड़ता है क्योंकि का मना है माने तो किस आले फिरौन की आदत की माने किस मामले में किस चीज को तशबीह दी जा रही है। अब या तो कहें आग का ईंधन होने में उनकी आदत और तरीका वही है काफी कुफर इख्तियार करने में उनका मामला वही है जो आले फिरौन की आदत थी अजाब का मुस्तहक होने में उनकी आदत या तरीका वही है जो आले फिरौन का था। इस तरह कुछ मानना पड़ेगा कि काफरू कुफरन कदाब आले या तो उनके कुफर को मुशाबहत दी जा रही है या उनके अजाब को मुशाबहत दी जा रही है या फायदा ना उठाने में कि आले फिरौन को ने भी फायदा कोई ना उठाया इन चीजों से इनको भी कोई फायदा नहीं। तो जिन चीजों का पीछे जिक्र आया है अजाब का फायदा ना होने का कुफर का वही उन्हीं में तशबीह है यानी इनका कुफर वो आले फिरौन किसी आदत वाली बात है उनका कुफर था। तो काफ जबर का में तशबीह देनी पड़ेगी किसी चीज से और वो या उनके कुफर को तशबीह है या उनकी सजा को तशबीह है या उनके अदम इखना से तशबीह है तब काफ तबर का कोई मायना बनता है। इसीलिए फिर उर्दू तर्जमा कर देते उनका मामला आले फिरौन का सा मायना तो ये नहीं है उनका मामला लफ्जी मायना आदत का है। शाह साहब ने हाल किया है उनका हाल आले फिरौन का सा है बल्कि हाल भी कर ले चलिए दाब का तर्जमा मायना तो आदत का होता है लेकिन हाल का मायना चल जाता है लेकिन काफ तबर का मायना तो न करना किया ना की मानिंद तो मानिंद में चाहिए है कि किससे मानिंद आप ठहरा रहे हैं। तो बात पिछली आयत को देखो तो कुफ्र या अजाब या अदम इहना इनमें मुशाबहत है। आले फिरौन ने भी कुफ्र किया था इन्होंने भी किया उनको अजाब हुआ इनको भी हुआ उनके भी माल काम ना है इनके ना है सब आदत उनकी तो काफ़ बरकात की तशबीह उन चीजों से वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम और उन लोगों के दाब जो कि उससे पहले हुए हैं यानी यूं भी मैंने हुआ आले फिरौन के हाल या आदत की माने और जो उनसे पहले हुए हैं उनका गोया के वल्ला जीना फिरौन पर अत्फ है और मजरूर होगा क्योंकि तो आले फिरौन में फिरौन तो मुजाफिल है गैर मुनसरिफ है मालूम हो रहा है हमें कि नून की जबर आ रही है तो उनसे पहलों की माने उनका फिरौन का सा फिरौन की आदत की माने तो उनकी आदतें और जो फिरौन से पहले इनसे पहले मिन कबले हिम उनसे पहले जो हो उनके से या तो कर लें यूं तर्जमा और कबले हिम पे कर लें वक्फ या गुंजाइश यह है कि आले फिरौन पे करें वक्फ कि इनका मामला आले फिरौन का सा है वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिन और जो उनसे पहले हुए उन्होंने भी हमारी आयतों को छुड़ाया। देखिए जब कुरान में असल वक्फ नहीं थे तो आलमों ने सोच सोच के लगाया ना कि यार यहां वक्फ होने चाहिए मायनों के लिहाज से ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बताए हुए नहीं ना वक्फ यही वजह है कि वक्फों में इख्तलाफ भी है मुख्तलिफ वक्फ लोगों ने लगाए हैं अपने वो इबारत को समझने के लिए यहां ठहरना चाहिए ये एक फिक्रा बनता है यहां तक की इबारत एक है तो इसमें जरा समझ की बात भी है और हिदायत की बात भी है। बाद जगह वक्फ ऐसा गलत किया जाता है कि कारी उसे कहते हैं वक्फ कभी कि उससे बड़ा अजीब सा अकीदा पैदा हो जाता है अगर हम किसी गलत जगहों पर वक्फ है किरात की किताबों में इसकी मिसालें दी हुई होती तो बहरहाल अगर हम आले फिरौन पे वक्फ कर ले तो ठीक है कि वो तो पिछलों के साथ हो गया उनका मामला आले फिरौन का सा था वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिन उनसे पहले जो है उन्होंने हमारी आयतों को जुलाया और चाहे तो वल्लज़ीन को भी आले फिरौन पे अत्फ करें और क़ब्लिहिम पे करें वक्फ उनका मामला आले फिरौन का सा और उनसे पहले लोगों का सा है कज़्ज़बू बिआयातिन फिर इस सूरत में एक हुम अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा यानी ये सब वो थे फिरौन और उससे पहले हुम का सबूत है जो उसका सबूत के अंदर ज़मीर फ़ाइल मौजूद भी है उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया फ़अख़ज़हुम अगर चाहे तो दाब का मायना ये भी आ सकता है जो बाद में तकज़ीब उनकी ऐसी थी जैसे आले फिरौन की थी पकड़ा उनको ऐसे जैसे आले फिरौन को पकड़ा ये पिछली आयतें भी दाब के मायने की वजाहत करती कज़्ज़बू बिआयातिन उन्होंने झुठलाया हमारे अहकाम को हमारी आयात को कज़्ज़बा के बाद बेकसला आता فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ अल्लाह ने उनको पकड़ा بِذُنُوبِهِمْ यहां सिला नहीं है वर्ब का बल्कि बसबब उनके गुनाहों بِذُنُوبِهِمْ ज़ुनूब की जमा ज़ुनूब और बेजुनूबहिम बेसबब बेजुनूबहिम, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों के सबब। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। शदीद के माने यहां मुशद्दिद के है एक तरह से, यानी सख्ती करने वाला है सजा में, यूं कर ले। शदीद फ़ईल बमाना फ़ाइल, और फ़ाइल फिर इससे मुशद्दिद बन सकता है, शद्दादा युशद्दिद। अल्लाह सख्त है बलिहाज सजा के, इक़ाब आक़बत उकूबत मुआक़बत सजा, लफ्ज़ी मैंने पीछे आना होता है ऐन क़ाफ़ बे में, असल मैंने पीछे आने का होता है, तो इक़ाब के मैंने पीछे आना यानी जज़ा सजा के लिहाज। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू, तो कह दे उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, सतुग़लबूना कि तुम मग़लूब कर लिए जाओगे, ग़लबा यग़लिब ग़ालिब आना, समय ग़लबा यग़लिब से आया था, ग़लबा यग़लिब जब मजहूल बने तो बनेगा ग़ुलिबा युग़लब, और उस युग़लब से है सतुग़लबूना तुम मग़लूब, तुम पर गलबा पा लिया जाएगा, या कह लीजिए तुम मग़लूब कर लिए जाओगे, या उर्दू तर्जुमा कर लो तुम मग़लूब हो जाओगे, जब मफ़ऊल लगा रहे हैं तो कर लिए जाओगे कहने की भी जरूरत नहीं, तुम मग़लूब हो जाओगे यानी कर लिए जाओगे। वतुहशरूना, और तुम इकट्ठे किए जाओगे, हशरा यहशुर इकट्ठा करना, कहते हैं कि यह असल वर्ब होता है ऊंटों को घेर घार के वापस घर ले जाने के लिए इकट्ठा करना, उसके लिए हशर का लफ्ज आता है, हशरा यहशुर। फिर कुरान करीम का अपना इस्तेमाल है इसका हशर का, वतुहशरूना और तुम घेर के इकट्ठे किए जाओगे, इला जहन्नम जहन्नम की तरफ, जहन्नम की तरफ घेर के लाए जाओगे। जहन्नम देखिए जबर जेर लगी हुई है, गैर मुनसरिफ है, इला के बावजूद जबर आई है। वबेसल मिहाद, और कितना बुरा है ठिकाना कह लीजिए, मिहाद के मैंने बिस्तर आराम करने की जगह होता है, बेसा कितना बुरा है, फेले मदह फेले जम है, यानी इसमें मदा नहीं है, फेल जम है, और बेसल मिहाद के बाद इसका एक मखसूस बिल जम या मखसूस बिल मदा होता है, वो यहां होगा होवा, यानी जहन्नम व बेसल मिहाद हो हिया, या कह ले जहन्नम ही लगा दे, व बेसल मिहाद हो जहन्नम हो, और कितना बुरा ठिकाना या आरामगाह है जहन्नम, यानी बहुत बुरा है, ये मैंने कितना बुरा है यानी बहुत बुरा है। कद कान लकुम आयतुन, बेशक तुम्हारे लिए एक निशानी थी, कान का इस्म है आयतुन, यानी क्या मीम हे दाल फैलाने का मायना होता है, बिस्तर का मायना भी किया जा सकता है, पहले लफ्ज आ चुका है, मीम हे दाल में बुनियादी मायना बिछाने फैलाने का होता है, इसी से तमहीद का लफ्ज निकला। कद कान लकुम आयतुन, तुम्हारे लिए एक निशान था, यहां अगर हम माने तो काना का इस्म आयतुन है और खबर है लकुम, यानी कायम मकाम खबर है, नसब में तो नहीं आया, मुअल्लल नसब में कहते, यानी कद काना आयतुन लकुम, एक निशान था तुम्हारे लिए, और लकुम की वजह से आप चाहे तो कद काना लकुम आयतुन, तुम्हारे लिए बड़ा निशान था, और चाहिए था आयतुन के लिए कद कानत लकुम आयतुन, क्योंकि वो मुअन्नस है तो फेल मोनस होना चाहिए था, काना क्यों आया, बस हुई बात, यह हकीकी नहीं है मोनस, जायजा इस तरह से लगा देना, गोया के फेल की मुताबकत जो तस्कीर तानीस में खास तौर पर है लाजिम होना, वो कुछ खास कायदे हैं। कद काना लकुम आया तुम, तुम्हारे लिए एक निशानी थी, फी फियातैने दो ग्रोहों में, फियातैने नकरा है, अल फियातैने नहीं है, क्योंकि नकरा है तनवीन तो नहीं आएगी तस्निया है, लेकिन नकरे का मायना तर्जमा यू होगा फी फियातैने उन दो ग्रोहों में जो के, जैसे अगर होता ये फी फियातिन तो आप तर्जमा करते उस ग्रोह में जो के, नकरा की तनवीन की वजह से, अब नकरा तो है फियातैने तो तर्जमा होगा दो ग्रोहों में जो के इल्तकाता आपस में मिले, इल्तका यल्तकी बाबे इफ्तियाल होगा लाम काफ ये का, बाबे इफ्तियाल इल्तका इल्तका यल्तकी, यानी इल्तका या यल्तकी मस्दर बनेगा इल्तका उन, इल्तपा मुलाकात, इल्तपाता, ये दो मुअन्नस के तस्नीय का सेवा है। गर्दान कर सकते हैं इल्तपा, इल्तपा या इल्तपा, हाँ ये बन जाएगा इल्तपाओ, और इल्तपा यत जो के बन जाएगा इल्तपत, फिर तस्नीय इसी तरह आएगा इल्तपता और आगे बनेगा इल्तपैना और फिर इल्तपाए तो इल्तपाए था। ये गर्दाने आप पढ़ चुके हैं महाराज, तो ये इल्तपता वो दोनों मुअन्नस आपस में मिले, ये वो है इसका असल फेल का था। फे अतैन चूंकि मुअन्नस है उनके लिए फेल यू हो गया। अगर फे अतान बाद में आता तो ये फेल यू होता, इल्तकल फे अताने, फिर फेल बाद मुजक्कर लगा सकते थे, फाइल बाद में आता। अब तो फी फे अतैन मुब्तदा बन गया, उसका इल्तकता उसकी सिफत आ रही है। फी फे अतैन उन दो ग्रोहों में फे आकर मादे की बात पहले हो चुकी है, इल्तकता जो कि आपस में मिले, मुराद है मैदान जंग में मिले, इल्तकल जमान, और इस तरह से कुरान करीम में लफ्ज आएंगे। सिर्फ इल्तका आया मिले, तो ये मैंने कोई एक दूसरे की जियारत के लिए जाना नहीं, मुराद जंग में मिले। तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में एक बड़ी निशानी थी जो कि जंग में आपस में एक दूसरे से मिले। फेअतुन तुकातलु फी सबीलिल्लाह है, एक ग्रोह उनमें से यानी फेअतुन मिनहुम या मिनहुमा का यहां ले ले, इसीलिए ये नकरा यहां मुब्तदा का काम दे रहा है क्योंकि पिछली इबारत से मुतालिक है। दो ग्रोहों का जिक्र हुआ, अब एक की ये बात है दूसरे की ये बात है, तो एक का मायना भी बरकरार रखना है। अगर हम अल्फिया कहें तो वो एक का मायना खत्म हो जाता है, इसलिए यहां नकरा मुब्तदा का काम देता है। तो ये जो आपने इब्तदाई कायदा पढ़ा था ना कि मुब्तदा जो है वो शुरू में होता है और मारफा होता है और रफा में होता है, ये कायदे आगे चल के टूट जाते हैं। फिर ग्रामर वालों ने जोर दिया, मेरे ख्याल में 8 या 12 तरीके निकाले कि वहां मुब्तदा नकरा हो सकता है, उनमें से इस तरह से प्रोवर्ब की सूरत हो, पिछली इबारत बता रही हो कि ये मुब्तदा है तो काम दे जाता है। फियातुन अलग नकरा है, फियातुन तुकातलो, एक ग्रोह वो जो के लड़ता है, तुकातलो मुअन्नस का सीगा है याद रखिये, कातला युकातलो, तुकातलो वो लड़ती है, एक ग्रोह लड़ती है फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वह उखरा काफिरतुन और दूसरी काफरा है यानी दूसरा काफिर है, क्योंकि फिया है ना, व फियातुन उखरा काफिरतुन और एक और ग्रोह है जो कि काफिर है। तो इस तरह से तुम्हारे लिए उन दो ग्रोह में एक निशानी थी कि एक ग्रोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था, वह उखरा काफिरतुन, दूसरा काफिर था यानी वो अल्लाह के राह में नहीं लड़ रहा था, कुफर की राह में लड़ रहा था। अंडरस्टूड है, यराउनहुम मिसलैहिम रायल अयन, यराउनहुम वो उनको देखते थे, यराउना मैंने वो देख, लफ्जी माना तो हाल का है क्योंकि आपने पढ़ा है कि इस तरह से फिक्रे में दरमियान में एकदम मुजारे आए तो हो हाल होता है ना। मसलन आप कहते हैं रएतुहु यक्तुबु, इसका तर्जमा मैंने उसे लिखते हुए देखा, आप यूं भी कह सकते हैं रएतुहु कातिबन, लेकिन मुजारे लगवा दे तो भी होता है ना, रएतुहु यक्तुबु, या कहे रएतुहु वहुव यक्तुबु, तो यहां यरौनहुम यानी वहुम यरौनहुम या राइनहुम उनको देखने वाले होते हुए, मिसलैहिम अपने से दुगना, वो उन इस हालत में कि वो देखते हैं उनको, मिसलैहिम उनसे दुगना, ये तो है लिटरल ट्रांसलेशन। वो मिसल की तस्निया मिसलान है, दुगना हुआ या ना, यानी जितने वो हैं मिसलै दो मिस दो बन तो फिर दुगने ही हुए ना, मिसल जितने और मिसलै ने दो नून गिर गया मिसलैहिम, ये मिसलैहिम नसब में क्यों हुआ है, यराउना के मफूल होने की वजह से, वो क्योंकि रा यरा यहां बमाना अलेमा भी हो सकता है, तो उस सूरत में उसके दो मफूल भी होते हैं, उन्होंने उनको देखा अपने से दुगना, देखते हुए उनको अपने से दुगना। अब ये जो लफ्जी तर्जमा है यराउना हम मिसलैहिम रायलैन, वो देखते हैं उनको अपने से दो मिसाल, उनसे दो मिसाल बल्कि कहना चाहिए, तो क्या मुराद है। अब इसके चार इम्कान आते हैं, चारों मायने हो सकते हैं, यराउना के फाइल मुसलमान हो और हम मुराद हो काफिर, तो वो देखते हैं काफरों को मिस लय हिम, काफरों से दुगने, जितनी काफरों की तादाद है उससे दुगने देख रहे थे, ये भी एक इम्कान हो सकता। दूसरा है यरौनहुम, वो देखते थे उनको मिस लय हिम अपने से दुगना, यानी हुम की जमीर भी मुसलमानों के लिए। तीसरी सूरत है यरौनहुम, वो अपने आप को देखते थे मिस लय हिम उनसे भी दुगना, या अपने आप को देखते थे अपने हकीकी तादाद से दुगना। चार मैंने हो सकते हैं हुम की जमीर की वजह से, और गुंजाइश चारों की है। देखे देखिए यरौना जमा का सीगा फे के लिए आया है माना के लिहाज, वरना देखिए यहां आना चाहिए था वह उखरा काफिरतुन तराहुम, तरा आना चाहिए था ना। तो यरौना तो और हुम की जमीरें तो फे के जमा की वजह से, यरौना के फाइल या मुसलमान हो सकते हैं या काफिर, हुम की जमीर काफरों के लिए भी हो सकते हैं मुसलमानों के लिए भी, दो ग्रोहों का जिक्र है ना, तो दोनों तरह गुंजाइश है। काफिर उनको यूं देखते थे, मुसलमान उनको यूं देखते थे। ये आगे सूरत अनफाल में फिर ये आएगा बयान इसका। ये यहां जो है जंगे शायद बदर का ही इशारा है उसकी तरफ, क्योंकि बहुत से पहले हुई हुई थी उसी का जिक्र है। तो ये जंगे अनफाल का जिक्र, जंगे बदर का जिक्र सूरत अनफाल में भी आएगा, वहां भी ये दुगना देखने का जिक्र। तो मुख्तलिफ रिवायतें हैं जो दोनों बातों को कहती हैं। यरौना के फाइल मुसलमान हो, वो अपने आप को काफरों से दुगना महसूस करते थे। फिर इस देखने को कुरान ने कहा है रायल ऐन, ये राय यहां मफूल मुतलक है, रा रायन। अच्छा ये एक अजीब बात है कि रा का मस्दर तो रोयत होता है जब आंख से देखा जाए, रा यरा रोयतन आंख से देखे, रा यरा रायन अगर दिमाग से देखे, और रा यरा रोयन अगर ख्वाब देखे। बात माजी मजारे की हुई रहती है, यहां है रायन, वो है कि वो फेल इस्तेमाल किया है जो अकल के लिए आता है, लेकिन कहा है आंख से देखना कि ये बिल्कुल आंखों से देख रहे थे। अब उधर रोयन और उधर दिमाग का भी इसमें मस्दर देखे तो है, रायरा का मस्दर बन सकता है रायन, देखते थे आंख का देखना, यानी बिल्कुल इन आंखों से देख रहे थे। उर्दू में तर्जमा तो फिर यही करना पड़ेगा, देख रहे थे इन आंखों से, अल ऐन की वजह से उन आंखों, मारफा का तर्जमा करने के लिए कर सकता है। उर्दू वालों ने क्या किया तर्जमा, वो तो हुआ यानी देख रहे थे उनको, देख रहे थे क्या था, मुराद काफिर लिए हुए, यानी यरौना का फायल उन्होंने काफरों को लिया है, और हुम का फिर साफ जाहिर है यरौना के फायल अगर काफिर हैं तो हुम जमीर मुसलमानों के लिए होगी। वो देखते थे काफिर मुसलमानों को क्या मिसलाए हैं अपने, उनके नहीं कहा, यानी जितने खुद थे उससे भी दुगने नजर आते थे, ये मैंने उन्होंने कर लिया। अब मुसलमानों को वो मुसलमान अपने आप को उनसे दुगना पाते थे, गुंजाइश तो उसमें ये भी है क्योंकि जमीर ही है ना, वो उसको उससे दुगना देखते थे, मुसलमानों अपने आप को उनसे दुगना देखते थे। हुम की जमीर की वजह से यह चार गुंजाइश है इस बिना पर कि यरौना के फाइल तो दो हो सकते हैं, या मुसलमान या काफिर, फिर हुम की जमीर के अदल बदल से माना हो सकते हैं। बहरहाल ये तफसीरी तर्जमा हुआ कि उन्होंने किया कि काफिर उनको अपने से दुगना देखते थे, ये एक मायना है उन चार में से, और शायद तफसीरी मायना के लिहाज से
ये उनको देखते हैं अपने दो बराबर की आंखें,
ये देखते हैं उनको अपने से दो बराबर, तो ये से मुराद क्या है, वो लफ्जी तर्जमा तो हो गया ठीक,
पीछे
जो के देखते हैं